और कुछ सीखने भी आया था। ग्राम स्वराज और गाय का प्रश्न, ये मेरे लिए दोनों ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके विषय में अब तक जो कहा गया है इतना भी मैं नहीं जानता था। मैं कुछ दूसरी बात आप लोगों से कहने आया हूं। सोच रहा था कि यहां जो कुछ निश्चय होगा उसका अमल करने वाले कौन होंगे। हम होंगे, ये हम कौन हैं, ये कहां हैं। मित्रों, आज इसकी खोज बहुत आवश्यक हो गई है। इस देश में हम और तुम अलग अलग हैं, राजनीति में तो हैं ही, जीवन के सारे क्षेत्रों में हैं। दिल्ली में तो आप उसका दृश्य देख ही रहे हैं, परंतु धर्म, संस्कृति, भाषा सभी क्षेत्रों में हम और तुम अलग हैं। तो क्या ये दोनों अलग रहकर अब इस देश में कोई गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? आज गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, और गुणात्मक परिवर्तन जैसा सवेरे पूज्य बाबा ने कहा, दिमाग से नहीं दिल से होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक बड़ा मार्के का सूत्र बतलाया, थ्रू द इंटेलेक्ट You yourself speak, through the heart God speaks. दिमाग हरेक का अपना अपना होता है, सवेरे हमसे कहा गया, लेकिन हृदय सबका करीब करीब समान होता है। तो क्या ये जमात, अब तक तो जमात ही रही है और संस्था भी रही है, एक परिवार के रूप में इस देश में अपना प्रभाव डाल सकती है? और प्रभाव से मेरा मतलब है इफेक्टिव एग्जिस्टेंस, प्रभावशाली अस्तित्व। असल में प्रभाव पड़ता है, डाला नहीं जाता। जो प्रभाव डालना चाहते हैं उनका प्रभाव क्षीण होता है, जिनका प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव से दूर रहते हैं। एक चीज मेरे मन में बहुत रही है और वो यह रही है कि हम दुनिया में अपने वजन को, अपनी कीर्ति को, अपने लौकिक को ही प्रभाव समझते हैं। रेप्यूटेशन, कीर्ति, दुनिया में जो हमारी छवि, जो हमारी प्रतिमा होती है उसी को हम प्रभाव समझते हैं। सच्चाई यह है कि ये जो कीर्ति होती है, दुनिया में नाम होता है, ये पानी की तरह होता है। हल्की हल्की चीजें सतह पर उतराती हैं, गहरी चीजें इसके तल में ही रह जाती हैं डूबी हुई। ये जो डूबी हुई चीजें तल में रह जाती हैं, ये हृदय में होती हैं। तो क्या यहां से हम जो निश्चय करके जाएंगे, उस निश्चय को कार्यान्वित करने में हम सबका हृदय एक होगा? अभी मैं हमारे भाई वसंतराव नारगोलकर का एक परिपत्र पढ़ रहा था। शीर्षक है गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं एक होंगी। हमारे देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दो अद्भुत नदियां हैं, शायद इसीलिए उनका उल्लेख बाबा ने किया था। ये दो नदियां ग्वालंदों में मिलती हैं, उसके बाद न गंगा रहती है न ब्रह्मपुत्र रहती है, पद्मा रहती है। मिलने के बाद इनका संयुक्त अस्तित्व एक भिन्न व्यक्तित्व में प्रकट होता है और उस नई विभूति को हम पद्मा कहते हैं। यह मनुष्य की अनंत और अखंड खोज रही है। अध्यात्म का अध्ययन मैंने बहुत किया है लेकिन समझा बिल्कुल नहीं। एक पकड़ की चीज उसमें से मैं समझा हूं मनुष्य की खोज क्या है। मनुष्य की खोज, निरंतर खोज मैं की तू के लिए है। बंग साहब ने सवेरे अपने बहुत विचार युक्त और संक्षिप्त भाषण में कहा कि आध्यात्मिक और नैतिक भूमिका होनी चाहिए। यह आध्यात्मिक भूमिका क्या है? मैं और तू एक दूसरे के निकट आना चाहते हैं। व्याकरण में ये दो पुरुष ऐसे हैं, मैं और तू, जिनका अंतर अधिक से अधिक होता है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैं दादा वही हूं जो भूदान में था, यानी वह के साथ तो मेरा तादाद में जल्दी हो जाता है, लेकिन ये मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि मैं दादा वही हूं जो तुम हो। इसलिए सारे वेदांतियों ने अधिक से अधिक अंतर मैं और तू में माना है, और मैं ये मानता हूं कि आध्यात्मिक आंदोलन की प्रक्रिया मैं की तू की तरफ दौड़ है, दोनों ओर से। और ये विषय हृदय का है, ये बुद्धि का नहीं है। बुद्धि में तो व्याकरण में दो पुरुष रहेंगे ही, और बुद्धि आपसे कहेगी कि यह असंभव है। असंभव हो या संभव हो, यह वस्तु स्थिति है। मैं का तू से जब तक निकटतम घनिष्ठ संबंध नहीं होता तब तक संतोष नहीं है। और मैं आपसे बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप चाहे गांधी का नाम लें, चाहे विनोबा का नाम लें, चाहे जयप्रकाश का नाम लें, ये तीनों विभूतियां ऐसी हैं जो किसी संगठन में समा नहीं सकती। इनका अपना व्यापक अस्तित्व है, व्यापक विभूति है, इसलिए ये किसी संस्था और संगठन में समा सके ये असंभव है। ये नाम तो हम सांकेतिक नाम लेते हैं, वो कुछ मूल्यों के प्रतिनिधि हैं, जिन मूल्यों को जीवन में हमने माना है, और उनमें सबसे बड़ा मूल्य है जीवन। अभी आपसे कहा गया कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, दूसरे ने कहा संस्कृति ही धर्म है। अब इन विवादों में हमको पढ़ना नहीं है, हमको इतना ही कहना है कि मनुष्य की सारी चेष्टाओं में सबसे प्रधान और सबसे मुख्य मूल्य जीवन होना चाहिए। पहले मनुष्य का जीवन, और मनुष्य का जीवन विशद कैसे होगा, मनुष्य का जीवन व्यापक कैसे होगा, मनुष्य का जीवन जैसे जैसे फैलेगा, उसकी अहंता नहीं मित्रों, अहंता अलग चीज है, अस्मिता अलग चीज है। मनुष्य की अस्मिता जैसे जैसे व्यापक होगी वैसे वैसे उसका जीवन संपन्न होगा। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जीवन की संपन्नता की एक ही कसौटी है, और वो यह है कि उसमें जीवन सर्वोपरि मूल्य माना जाए और मेरी अस्मिता व्यापक बने। मनुष्यों का, सारे मनुष्यों का समावेश मेरे जीवन में हो, जीवन से मतलब जीवन का दर्शन, व्यवहार में भी अधिक से अधिक हो, मनुष्यतर प्राणियों का हो, वनस्पति का हो, सृष्टि का हो, इन सब के साथ मेरा रिश्ता कायम हो, ये सारे मेरी जीवन की विभूतियां बने। अनेक बार आपसे मैं निवेदन कर चुका हूं कि जीवन के विस्तार का एक तरीका सिकंदर का है और दूसरा तरीका ईसा मसीह आदि संतों का है। सिकंदर साम्राज्यवादी था, अपनी अहंता में दूसरों का समावेश करना चाहता था, अंग्रेजी में इन्फ्लेटेड ईगो, हवा जिस अहंता में भरी गई है वो अहंता, वो फूलती है, फैलती है, लेकिन दूसरों को परास्त करती हुई, दबाती हुई, उनके जीवन को क्षीण करती हुई। संतों की अस्मिता व्यापक होती है, वो दूसरों के जीवन में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है। ये व्यापक होने का दूसरा ही तरीका है जिसका वर्णन विनोबा ने अपने स्वराज्य शास्त्र में कहा किया है। राज्य अलग है, स्वराज्य अलग है। ये स्वराज्य ऐसा वैभवशाली है, इसमें इतना ऐश्वर्य है, किसी त्रिभुवन के सम्राट को भी वो प्राप्त नहीं हो सकता। आपकी और हमारी ये जो जमात है, इसका परिपाक, इसकी परिपूर्ति किसी प्रकार की पारिवारिकता में होनी चाहिए, और इसके लिए सहृदयता चाहिए। बुद्धि से अधिक सहृदयता की आवश्यकता है। सहृदयता से मतलब है हमारा हृदय दूसरे की हृदय से मिलने के लिए चंचल हो उठेगा, बेचैन हो उठेगा। यह सहृदयता की पहचान है। मेरे परिवार के लोग कहीं होंगे जिनका मेरा रक्त का संबंध है, लेकिन हमेशा उनके लिए एक भावना मेरे चित्त में रहती है, हृदय उनकी तरफ खींचता रहता है। क्या उनके सारे मत मुझसे मिलते हैं? क्या उनकी जीवन की प्रणाली और मेरे जीवन की प्रणाली एक है? मित्रों, यह सारा विश्व अगर एक रूप बन जाएगा और एक रंग का बन जाएगा तो इसमें कोई रोमांस नहीं रहेगा, कोई सौंदर्य नहीं रहेगा। आवश्यकता क्या है? विविधता हो, लेकिन ये सारी विविधताएं परस्पराभिमुख हों, जैसे संगीत में होती। संगीत में गीत गाने वाले की राग और जितने वाद्य होते हैं उन वाद्यों का संगीत सब मिलकर एक सामूहिक संगीत होता है, उस तरह से वृंद संगीत दुनिया में जब होगा तब हो, मैं नहीं जानता कब होगा, लेकिन एक जमात में तो हो। विश्व को आज जिस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता है, वो संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति एक ही उपाय से हो सकती है, और वो उपाय यह है कि मनुष्यता की, मनुष्यों की विविधताएं परस्पराभिमुख हों। यह अभिमुखता हम इस देश में प्रकट करना चाहते हैं, इसका आविष्कार करना चाहते हैं, लेकिन इसका आरंभ कहां से हो? बस इतनी एक ही बात मैं अंत में कह देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि समय की कमी है और मैं बहुत लंबी जीव का आदमी हूं। जी हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन जितना समय है उतना भी न लूं तो आप मुझे धन्यवाद देंगे। ये परस्पराभिमुखता सारे विश्व में और इस देश में हम प्रकट करना चाहते हैं, ये मैंने आपसे निवेदन किया। इसके लिए सबसे पहले हमको अपने में परिवर्तन करना हो। समाजवादी और बापू दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी मतभेद था। समाजवादी मेरे बहुत से मित्र तब भी थे, आज भी हैं, और वो काफी खुशहाल हैं, सुख चैन से रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी संपत्ति रखते हैं और संपत्ति का निराकरण चाहते हैं, इसमें मुझे कुछ विरोध मालूम होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं संपत्ति का त्याग कर दूं, इससे समाज परिवर्तन नहीं होता है, वो तो केवल संपत्ति का स्वामी बदल जाता है। बिरला ने अपनी सारी संपत्ति दे दी तो दादा धर्माधिकारी बिरला बन जाएगा। तो बिरला कोई ऐसा राक्षस तो है नहीं, पापी। तो तुम जब तक संदर्भ को नहीं बदलोगे, पूंजीवाद रहेगा, तब तक संपत्ति दे देने से कुछ नहीं होगा। बापू ने इस पर लिखा कि यह तो सही है कि समाज परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन जो समाज परिवर्तन करेगा उसका अपना परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या पहचान। समाज परिवर्तन के बाद जो करना चाहता है उसका आरंभ अपने जीवन से होना चाहिए, इसलिए हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ अपने से होता है। ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये प्रतियोगी सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो है ही नहीं। हृदय परिवर्तन वही कर सकता है जिसका अपना हृदय परिवर्तन हुआ हो। तो हमें निरपेक्ष, निरुपाधिक, सौहार्द मैत्री का संबंध अपने से शुरू करना होगा। जवाबी दोस्ती नहीं, निरपेक्ष दोस्ती। यह सम्मेलन अगर यह कर सका तो मैं नहीं जानता गोहत्या बंद होगी कि नहीं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि इस देश में एक प्रचंड नैतिक शक्ति, मानवीय शक्ति पैदा होगी। मेरा यह अनुभव है। गांधी के जमाने में हम राष्ट्रीय विद्यालयों के शिक्षक मुट्ठी भर थे, तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के आदमी। हमारे पास किसी प्रकार का वैभव नहीं था, न बुद्धि का था और न संपत्ति का था, सत्ता का तो था ही नहीं। लेकिन अपने शहर में हम जहां जाते थे, हिंदू मुसलमान और सारी पार्टियों के लोग ये कहते थे कि ये बेवकूफ हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं, ये ईमानदार आदमी है, इनका भरोसा किया जा सकता है। और ये अक्सर हमारे परिवार में भी होता था। सोने का गहना जब मेरे ममियारे से हमारे घर भेजना होता था तो सबसे बेवकूफ नौकर चुना जाता था, वो ईमानदारी से उसे पहुंचा देता। ये जो ईमानदारी है मित्रों, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारा सत्व है। और ये ईमानदारी पहले प्रकट होनी चाहिए हमारे आपस के एक दूसरे के संबंध में। यह करने की चीज नहीं है, यह होने की चीज है। बड़ी पते की बात धीरेन्द्र कहा करते थे, कुछ चीजें करने की नहीं होती, होने की होती हैं। सेवाग्राम में अभी एक सेमिनार हुआ था, एक नौजवान ने मुझसे प्रश्न पूछा कि प्रेम कैसे किया जाता है। मैंने कहा किया जाता हो तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम कोई किया जाता है? कहने हम प्रेम को कल्टीवेट करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। तो मनुष्य को कल्टीवेट करो तो प्रेम अपने आप आएगा। कल्टीवेट दोस्त किया जाता है, दोस्ती नहीं। मित्रों, प्रेम की रुकावटें बंद करनी होती हैं, रुकावटों को दूर करना होता है। प्रेम तो सहज स्वभाव है मनुष्य का, जैसे नदी का बहना स्वभाव है। फिर आप बांध भले ही बांधिए, ऐसे मनुष्य का मैं का तू की तरफ बहना, प्रवाहित होना स्वभाव है। वो स्वभाव अगर हमारी इस जमात में प्रकट हो सका तो हम कितने ही कम क्यों न हो, आकार में छोटे रहेंगे लेकिन गुण में बहुत बड़े हो सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। पता नहीं क्या होने वाला है। आज पढ़ते हैं कि चरण सिंह की हत्या का प्रयास हुआ, इससे पहले पढ़ते थे इंदिरा जी की हत्या का प्रयास हो रहा है, फिर किसी ने कहा मोरार जी की हत्या का प्रयास हो रहा है। क्या इस देश में मतभेद के साथ मनुष्य जी ही नहीं सकेगा? क्या अलग अलग बुद्धि के निर्णय हो तो साथ बैठकर मनुष्य भोजन नहीं कर सकेंगे? एक दूसरे के खाने में, सहभोजन में आनंद नहीं ले सकेंगे? अगर ऐसा होगा और इस भारतवर्ष के में होगा तो आप समझ लीजिए दुनिया में मनुष्यता का अंत करने के लिए किसी हाइड्रोजन बम और एटम बम की जरूरत नहीं। तो ये जो मैं कहना चाहता था, बहुत थोड़े में आप लोगों की सेवा में निवेदन किया है, और थोड़े में इसलिए किया है कि यहां आप लोग बैठकर काम की बातें सोचने वाले हैं, और मैं आपसे आज बिल्कुल अंतिम रूप में कह देना चाहता हूं कि अब मैं कोई काम करने वाला नहीं हूं, अब तक भी नहीं किया है लेकिन आगे बिल्कुल करने वाला नहीं हूं। इसलिए उस संबंध में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, उस संबंध में बोलने के लिए मैं आपके सम्मुख आना नहीं चाहता। लेकिन एक मेरी हृदय की व्यथा थी और एक अरमान भी था, उस व्यथा उस और उस अरमान को आप लोगों के चरणों में प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ था। आपसे प्रार्थना है इसको आप सोचिए, समझिए, और अगर समझ जाएंगे तो आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ की ही आवश्यकता है। आप सबको धन्यवाद है, नमस्कार।
translate that for us in
English.
Kindly translate that for us in English.
There is an old story about a guru, that is a master, and his disciples. And it is described by a third party saying that the guru is in
लोगों ने मांग की आप थोड़ा और समय दीजिए करके हम लोगों को काम करने के लिए आवास की जरूरत है। इनका ठीक है, थोड़ा और समय दीजिए, कुल की कुल ताकत इस एक मसले के लिए सब मिलकर लगाइए। मेरा ख्याल है भारत भर में हमारे कम से कम 50,000 तो कार्यकर्ता होंगे ही। अब वो सब मिलकर अपनी सम्मिलित शक्ति इसलिए लगाते हैं, ऐसा भगवान ने कबूल किया कि थोड़ा समय और देंगे, उतने सारे समय का पूर्ण उपयोग करके गोहत्याबंदी या कभी वे सफल हो गए, बहुत बड़ा काम होगा और आपको सबको बाबा को भी आनंद होगा। अभी आपने विश्वसनाम पढ़ा, विश्वसनाम में भी आपने सुना होगा गो ही तो गोपति गोपता, भगवान के हजार नाम उसमें आए हैं, ये तीन नाम और भी कई जगह आ गए हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि विश्वसनाम में भी गाय के लिए कितनी उत्तम प्रेरणा दी गई है और समझने की बात है। इसे मैंने आपको कहा था थोड़ा समय के लिए और भी दे देंगे बाबा, क्योंकि इसमें मैं सारी ताकत एक बात पर लगाओ। एक ऐसा रे सब सरे, कबीर ने कहा था सब सारे सब जाए, पर अनेक मसले हल करने की अपनी प्रवृत्ति जारी रहेंगे तो सब सारे सब जाए, कुछ ही सरेगा नहीं। लेकिन एक चीज पर अगर आप ठीक से ध्यानस्थ होकर के लग जाएंगे, सब लोग मिल करके हमको भगवान ने अनेक मास्टर दिए हैं, सारे की अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने विचार हो गई, लेकिन उसके सबके साथ हृदय आपको एक ही दिया है। ये मस्तक अलग अलग है, हृदय एक ही है, इस वास्ते सबका सब हृदय इस काम में लगाओ। बाबा की प्रार्थना के लिए बाबा को पूछा जाएगा बाबा बड़ा गाय बड़ी, बाबा उत्तर देगा गाय बड़ी। क्यों ऐसा उत्तर देगा? बाबा को माता का रूप पीने को मेरा 9 महीने 40 साल भर समझ लीजिए, उसके बाद 80 साल पूरे हो गए, इतने साल केवल गाय के दूध पर ही भगवान का शरीर चल रहा है। जब वो नहीं मिला होता तो कोई भी शक्ति शरीर में न रहेगी और शरीर चल रहा चित्र भी न रहेगी। समझने की बात है, विष्णु भगवान ने प्रयोग किया था एक साल दूध छोड़ने का, एक साल भर चला वो प्रयोग, उतने में बाबा का शरीर काफ़ी ठीक हो गया, तो फिर से खाना दूध पीना शुरू कर दिया। तो ये सब कहानी आपके सामने आज मैंने थोड़े में रख दिया। कई दफा मैंने कहा है कि हिंदुस्तान में इनकी संस्कृति में भरा हुआ है गाय के लिए आदर, यहाँ तक कि मुस्लिम संस्कृति में भी आदर है। बाबा ने कुरान सार लिखा है, बाबा ने कृष्ण धर्म सार लिखा है, और कुरान का तो बाबा ने उत्तम अभ्यास किया है, वो कंठस्थ है काफ़ी कुरान का हिस्सा। एक बार अबुल कलाम आजाद आए थे गांधी जी के सामने, और गांधी जी ने कहा बाबा को, बाबा ने कुछ थोड़ा अध्ययन किया है कुरान का, तो थोड़ा बोलो। सामने बैठे थे उनके सामने मैंने कह दिया, वो बोल उठे, ये तो ऐसा सुना जैसे कोई मौलवी बोल रहा हो, ऐसा ही सुना। तापर ये कुरान का उत्तर अध्ययन भगवान ने किया है, कंठस्थली का भी किया है, उसका थोड़ा सा सार निकाला है, उसने भी स्पष्ट किया है गाय का रूप ही हो, गाय आपके लिए भगवान का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद है, इसके साथ आप शहर वगैरह ले सकते हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा कुरान सार में। इसके अलावा भगवान ने निकाला है कृष्ण सार, उसने तो एक पॉल बोल रहा है, मैं मांस खाऊँ उस समय वो पढ़ाने बेहतर नहीं बन सकता, मांस छोड़ू तो मैं खराब नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पड़ोसी को अगर मेरे मांस खाने से कुछ भी शर्मा पहुँचता हो, दुख होता हो, मैं जिंदगी भर में कायम के लिए मांस छोड़ूंगा, इससे पॉल ने कहा है। ये सब आपके लिए समझने की बात है, आज तो पवित्र दिन है ईसा मसीह का, और ईसा मसीह का जन्म आपने सुना होगा गौशाला में हुआ था, तो सुना है क्या प्रॉब्लम, इस वास्ते ये समझने की बात है। अपने संस्कृत में गौ शब्द है, तो इस तरह से इससे काऊ बन गया, तो काऊ इंग्लैंड तक पहुँच गया जाकर गौ। और भगवान ने जापानी भाषा का भी अध्ययन किया है, जापानी भाषा में ग्यू कहते हैं, गौ को ग्यू बन गया जापान में, और गौ को काऊ बन गया इंग्लैंड में। इधर इंग्लैंड से लेकर जापान तक का संस्कृति गाय की फैली हुई है, ये आपके सामने मैंने इसके पहले भी रखा हुआ, लेकिन आज विशेष रूप से आपके सामने रखा, मैंने कई दफा कहा है। गौतम बुद्ध है यानी कौन, मराठी में कहेंगे इसको भैरवा, और गौतम बुद्ध भैरवा, और महावीर पहले ऋषभदेव, ऋषभ यानी क्या बार महीना है, सबका तो बैल है, जैन भी बैल होगा, बौद्ध भी बैल होगा, तो बाबा तो बैल होगा ही। इस वास्ते आपको और सबका छोड़ करके थोड़े दिन इसके पूर्ण एकाग्र से लगना चाहिए, और हत्याबंदी हो ऐसी पूरी कोशिश करके हत्या बंद करानी चाहिए। बाबा को दोनों हाथ में लड्डू है, और आपके प्रयत्न से हत्या बंदी हो गई, आपको बड़ी खुशी होगी, आनंद होगा, वो हत्या हो गई। आपके प्रयत्न के बावजूद वो हत्या नहीं हुई, तो बाबा को बलिदान करने का मौका मिलेगा, तो बलिदान का आनंद आएगा। क्या ना कोई है कि नहीं जैन, जैन है जैनों का एक उत्तम ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया समण सूत्रम, समण सूत्रम जो प्रसिद्ध हुआ बाबा के विचार के कारण प्रकाशित हुआ, जो बात हजार साल में नहीं बनी थी वो बन गई और उत्तम ग्रंथ तैयार हो गया। उसमें लिखा है कि विशेष कारण से संथारा करना पड़े, मर बीटना पड़े, तो मर बीटना चाहिए। तो महावीर को मैं पूछूंगा, गो हत्या बंदी के लिए अगर मैं बलिदान दे दूँ तेरी सम्मति है कि नहीं, तो महावीर कहेगा अवश्य सम्मति है। महावीर तो यहाँ तक कहेगा किसी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरंभ उसका गाय से करो, वो समझ नहीं आता है। तो महावीर का, बुद्ध का पूरा आशीर्वाद बाबा को प्राप्त होगा और आप लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा अगर आप सब लोग जोर करके इस काम में लगा जाएंगे। कहा तक अमर प्रभा भाई देव कौन है हेमा से लेकिन वहां तक समय जैनेन्द्र जी बैठे जैन तो पूरे पूरे इस काम के लिए अनुकूल ही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी ज्यादा आपको क्या कहना, थोड़े भी बहुत कुछ कह दिया खाली 10 मिनट बोला है। तेरा मिनट बाबा बोला तेरा 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 मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं तेरा 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 जानते हो कि कहानी नानक व्यापारी था, उसका भी बच्चे को व्यापार के काम में लगाया था, एक दो तीन करके देता गया तेरा शब्द तो देता ही रहा तेरा 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 तेरा। तो उसके पिता ने पूछा तो क्या बेवकूफ से बना, तो बोला तेरा तेरा और मेरा कुछ है ही नहीं, आज से व्यापार में छोड़ दिया। तो नानक को दास ने व्यापार में से हटा दिया, तब से वो गुरु नानक बन। इसलिए तेरा में बाबा बोला है अब तब तेरा 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 और मेरा कुछ नहीं। को प्रणाम जय जगत आत्म।
अभी बाबा ने आपके सामने अपना जो
कहते हैं
प्रवचन होता है वो
प्रश्न पूछेंगे,
लेकिन अपेक्षा
प्रश्न मूर्ति पहले खड़े हो जाए प्रश्न मूर्ति किसी को पूछना है क्या। देवेंद्र राय कहते हैं बाबा आप हम लोगों को कितने दिन का समय काम करने के लिए देंगे, कम से कम 101 दिन का समय तो दे। 101 माना है मैंने, 100 नहीं माना। आजकल रुपये लेते 101 दे मैंने 101 दिन का मेहमान है, बाबा आपको 111 दिन करेगा। एक तीन एक ठीक है एक एक 111 बाबू राव चंदावार पूछे हैं आप कर्म मुक्ति संकल्प किया था आखिर कर्म में आ गए क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ बाबा खाता रहता है कर्म मुक्त हुआ तो भी खाना छोड़ा नहीं, खाना छोड़ा नहीं इसलिए ये काम नहीं छोड़ सकते, खाना ही छोड़ दिया होता तो पूरे कर्म मुक्त हुए होते, कर्म मुक्ति ढोंग गई है। जब तक खाना जारी रहेगा तब तक ये ढोंग मारा रहेगा, ठीक है कि नहीं। कुछ था 1 जनवरी से 111 दिन में हाथी, 1 जनवरी के बाद 111 दिन बंदी होगी कानून से, अमल कौन करेगा, कानून से बंदी हो गई तो भी अमल नहीं हो सकता, ऐसी बात कर्नाटक में देखी गई, कर्नाटक सरकार का कानून हो गया है हत्याबंदी, लेकिन बेंगलुरु में गाय काटी जा रही है इस वास्ते उसके लिए आपको सत्याग्रह करना होगा वहाँ। ये कहता है पत्नी जी मुंबई गोमाव सीकरी चालू से ग्वाली भाली होती है, मानी पूछती है कानून से होगी, अमल कौन करेगा? आपको और हमको करना पड़ेगा। जहाँ गो हत्या चलती होगी जा करके सत्याग्रह करना होगा। पूछती है लखनऊ वाले भाई हकीम, आपने उपवास शुरू करने का तय किया, हम कार्यकर्ता क्या करें? आपको सब दूर जा करके प्रचार करना पड़े, आप प्रत्यक्ष जहाँ हत्या चलती होगी और कोई नहीं सुनते होंगे, आपको सत्याग्रह करना है, खाना छोड़ करके कर सकते हैं उपवास वगैरह। सामान्यतः आपको प्रचार ही प्रचार करना होगा। उसका कौशिकानंद, क्या बाबा के साथ मुझे भी जाना होगा? शहर में आपको बाबा के साथ नहीं जाना है। बाबा ने जो बताया काम वो काम करते करते हुए आखिर बाबा मर जाएंगे मान लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं उपवास वगैरह जो करना हो, तब तक तो आपको प्रचार संचार करना होगा। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान सिख और बहुत मात्रा में ईसाई भी है, वहाँ के लिए गो सेवा के विषय में आप क्या प्रश्न दी? मैंने सुना है आपने डिसाइड सुना होगा शेख अब्दुल्ला ने हत्याबंदी जाहिर किया है, कई साल पहले जाहिर किया है, आज तक जारी है। विद्याचंद्र विद्या दे रहा है, कहता है बाबा प्रार्थना है कि आप पूरा भोजन देंगे आंशिक नहीं। रात ऐसे 111 दिन जनवरी से समय ठीक बात है, 111 दिन आपको दे दिए जनवरी के बाद, तब तक पूरा भोजन बाबा करेगा। ताली बजा रहे लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, जो आधा पेट भरेगा वो दिएगा, तो पूरा पेट भरेगा तो मर जाएगा। ठीक है कि नहीं? मेरा भोजन का अर्थ आज बाबा जितना लेता है उतना वो ठीक है। ये बाबा आपकी कृपा से गोवर्धन जी का नाम तो बन गया, बचे प्रदेश में भी बन जाएगा, परंतु बिजली ट्रैक्टर और कृषि में उपयोग बढ़ते जाने से गाय का बचना कठिन है, और क्या है बताइए? आपको शायद मालूम होगा अरब लोगों ने तैराश का प्रयोग किया, तैल किसी को भेजेंगे नहीं, परिणाम क्या हुआ? इंग्लैंड से लेके जापान तक सबकी हालत बिगड़ गई, परंतु अगर गोबर गैस प्लांटर बना लेंगे गांव गांव में तो बिजली का काम भी उससे हो जाएगा, आपके घर के रसोई भी उससे पकेगी, यानी सब काम गोबर गैस प्लांट से हो जाएंगे। इसलिए ये शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रश्न है।